हम लोग तो लाभ लेने आए हैं, जितना लाभ ले सके उतना लाभ। भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण से भी जीव को लाभ होता है, किंतु भगवान के चरित्रों के श्रवण से भी अधिक लाभ उनके प्यारे भक्तों के चरित्रों के श्रवण से होता है। यद्यपि ये बात स्वामी जी सैद्धांतिक रूप से है कि बिना भक्त के भगवान का कोई चरित्र नहीं बन सकता। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान से कह दो कि भक्त का नाम न आवे, आप भगवान की कथा कहो, कह सकोगे भगवान की कथा? क्या कहोगे भगवान की कथा? एक वाक्य नहीं बोल सकते कथा की क्या चले। भक्तों से ही तो उनकी कथा का विस्तार हुआ है। अथवा कोई ये कहे कि तुम केवल भक्त चरित्र कहो, भगवान की बात उसमें नहीं आनी चाहिए। अरे भगवान उसके तन मन प्राण जीवन में समाहित हैं, इसीलिए तो वो भक्त है। बिना भगवान के भक्त का चरित्र नहीं और बिना भक्त के भगवान का चरित्र नहीं, ओतप्रोत हैं एक दूसरे में। पर जब प्रधान रूप से कोई भगवान का चरित्र श्रवण करने बैठता है तो उसके चित्त में पहले ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं किसी सामान्य का चरित्र नहीं सुन रहा हूं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान का चरित्र सुन रहा हूं। तो भगवान के चरित्र में आश्चर्य, भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर कई बार ये कहता भैया भगवान कर सकते हैं, हम उनकी नकल थोड़ी कर सकते हैं। ये बात रहती मन में कि नहीं रहती? हम कहां भगवान की नकल कर सकते हैं। पर जब हम भक्त का चरित्र सुनते हैं तब ये भाव चित्त में नहीं रहता, उस समय चित्त में होता। जैसे हम किसी प्रांत में, किसी देश में, किसी वर्ण विशेष में, किसी समुदाय विशेष में हमने जन्म लिया, हमने अपने जीवन में जैसे अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल भावों का अनुभव किया, ऐसे ही अमुक संत ने भी। बात चित्त में होती कि नहीं? तो साधक जगत को एक बहुत बड़ा धैर्य प्राप्त होता है। उनको लगता है कि अरे वे अमुक जाति में जन्म लेकर, अमुक जगह जन्म लेकर, ऐसे ऐसे संघर्ष सहन करने के बाद इतने ऊंचे तक पहुंच गए, हम उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले, उनके बताए निर्दिष्ट पथ पर चलने वाले, हम क्यों वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं? यह एक उत्साह, यह एक धैर्य साहस के भीतर, साधक के भीतर आ जाता है। इसलिए भक्त चरित्र भगवत चरित्रों की अपेक्षा अधिक प्रेरणादायी है। श्री बंका जी ने पूज्य श्री राधा बाबा का जो चरित्र लिखा है बहुत अद्भुत लिखा है। कोई भी सहृदय द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता, इतना सुंदर लिखा है। हमको भी एक बार पढ़ने का सौभाग्य मिला, उसको पढ़ के तो हमको लगता है कि शायद इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतना संघर्ष, इतना कष्ट हमें तो नहीं कोई दिखाई पड़ता जिसने सहन किया हो। अपने क्रांतिकारी जीवन में बाबा ने कितने कठोर कष्ट सहन किए, कोई कल्पना कर सकता है क्या? और फिर इधर आकर भाव राज्य की, रस राज्य की, मधुरता के साम्राज्य की कितनी ऊंची से ऊंची अनुभूतियों को प्राप्त किया। तो अब कोई भी उस चरित्र को पढ़ेगा तो उसे जरूर एक प्रेरणा मिलेगी कि इस पथ का अनुसरण करके यहां तक पहुंचा जा सकता है। यद्यपि पहुंचेगा भगवान की कृपा से, आचार्य की कृपा से, संत की ही कृपा से, लेकिन उसके भीतर यह उत्साह जागृत हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात महर्षि वाल्मीकि के अवतार है। इस बात को नाभा गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख है, और अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है। मूल गुसाई चरित नामक ग्रंथ के लेखक श्री बाबा बेणी माधवदास जी महाराज, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन ही थे, उन्होंने मूल गुसाई चरित नामक पुस्तक लिखी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र के संबंध में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। मूल गुसाई चरित्र उन्होंने भी खूब निष्ठापूर्वक इस बात को स्वीकार किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के अंशावतार हैं। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, इस बात को स्वीकार किया है। और गोस्वामी जी का जीवन देखिए, शायद अपने बाल्यकाल में ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा अन्य किसी ने सहन न की होगी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सहन। इनकी छाया से लोग घबराते हैं, छाया से। गोस्वामी जी ने कहा, मानत हो चार फल, चार ही चणक को। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोई चार चने, कोई चार चने हमारी हथेली पर रख देता था तो हमको लगता था ये कितना दयालु पुरुष है, इसने आज बिना मांगे हमें चारों पुरुषार्थ दे दिए। गोस्वामी जी ने बाल्यकाल में जो पीड़ा सहन की, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके काव्य में भी यत्र तत्र हुई। इसका मतलब है उस परम दिव्य श्री राम प्रेमानंद को प्राप्त करने के बाद भी, भगवत प्रेम सिंधु में डूबने के बाद भी, कभी उन्हें अपनी बाल्यकाल की पीड़ा का स्मरण होता है तो वे व्याकुल हो जाते हैं। एक दिन ऐसा था, कवितावली में गोस्वामी जी कहे, कवितावली, मातु पिता जग जाई तज्यो। संसार में सबसे बड़ा सुख माता पिता का होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, माँ ने भी चुनिया को दे दिया, माँ तो चल बसी और पिता भी, पिता का भी सुख नहीं। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने त्याग दिया और विधाता ने भी ललाट पर हमारे सुख नहीं लिखा। नीच निरादर पवित्र सरयू पारिण वित्र कुल में जन्म हुआ, पराशर गोत्र में जन्म हुआ, पवित्र कुल में जन्म हुआ, लेकिन मैं ऐसी दुर्दशा से ग्रसित हो गया कि ब्राह्मण बालक होते हुए भी स्वपच से भी आदर प्राप्त नहीं किया, उससे भी मुझे तिरस्कार ही मिलता। झाड़ू लगाने वाला भी दस पांच खड़ी खोटी हमको सुना। तो स्वामी जी बालपन की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। नीच निरादर भाजन कादर, कुकुर टूकन लाग ललाई। जैसे कहीं भोज भंडारा होता है तो कुत्ते पत्तल गिरती है उसके लिए ललचाते हैं, यही दशा थी, मैं अन्न के कण कण के लिए भी तरस गया। और राम सुभाय सुन्यो तुलसी, प्रभु सो कहो बारिक पेट खलाई। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सुसाहिब खोर न लाई। इसका भाव यह है, गोस्वामी जी कहते हैं हम तो पेट खलाए घूम रहे थे, पेट में तो कुछ था ही नहीं, तो राम जी के भी भजन में जो प्रवृत्ति भई वो ऐसे नहीं भई, इसलिए भई भैया राम राम करेंगे तो पेट तो भर ही जाएगा, इस भाव से राम जी से जुड़े, राम नाम से जुड़े। पर जब राम जी की शरण हो गए तो पता चला ऐसे स्वार्थ को सिद्ध करने वाला और ऐसा परमार्थ को बनाने वाला ऐसा सील सिंधु दूसरा कोई साहिब नहीं है, जो हमारे जैसे व्यक्ति का इतना आदर जिसने किया हो, ऐसे तो मेरे करुणा सिंधु पतित पावन भक्त वत्सल श्री राम जी ही। आगे कह रहे हैं, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललात बिललात द्वार दीन दीन, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चार फल चार ही चणक को। चार चना मिल जाते तो समझता चार पुरुषार्थ मिल गए। तुलसी सो साहिब समर्थ की सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधि गणक को, नाम राम रावरो सयानो किधो बावरो, जो करत गिरिते गरु तृणते तनक को। मैं तृण से भी अधिक छोटा था, तुच्छ था, पर मुझे गिरी से भी गरु कर दिया, कहां तिनके से अधिक हल्के जैसे मेरे व्यक्ति को इतना बड़ा गरिमामय श्री रघुनाथ जी ने बना दिया। आगे फिर कह रहे हैं कवितावली, जाति के सुजाति के कुजाति के पटाग बस, खाए टूक सबके विदित बात दुनी सो। बोले ऐसी कोई अपने जीवन की बात तो कोई कहता नहीं, आप क्यों कहते हो? गोस्वामी जी कवितावली में कह रहे हैं कि हम छिपावे तो तब जब केवल हम ही जानते हो, ये तो सब दुनिया जानती, तुलसीदास की क्या दशा थी? सुनी खाए टूक सबके विदित बात दुनी को, सारी दुनिया में ये बात प्रसिद्ध है तुलसीदास जी की क्या दशा थी। मानस बचन काय किए पाप सत भाय, राम को कहाय दास दगाबाज उनी सो। नाम को प्रभाव राम नाम को प्रभाव, पाव महिमा प्रताप तुलसी सो, जग मानी अत महामुनि सो। अत ही अभाग अनुरागत न राम पद, मूढ़ो मूढ़ ऐसो बड़ो आचरज देख सुनी सो। गोस्वामी जी कहते हैं भैया मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में भी इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, मुझे प्रभु ने इतना गरिमामय बना दिया, ये मेरी महिमा नहीं है, तब किसकी है? ले श्री राम नाम की महिमा है। और ऐसी राम नाम की महिमा हमारे जीवन में घटित हुई है उसको जान कर भी, और यदि कोई राम नाम में न लगे तो गोस्वामी जी कहते उससे बड़ा मूढ़ और कोई दूसरा नहीं। पोहावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारी दशा कैसी थी, घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति पूजे पाए,
घर घर में टुकड़े मांगते, चल हट दरवाजे से चला जा, अपने मैया बाप को खा गया, तेरी छाया से हमारा अनिष्ट हो जाएगा। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुख से हमने सुना, महाराज जी कहते थे तेरी छाया से अनिष्ट हो जाएगा तो हमारे द्वार पर खड़ा होने लायक नहीं है। एक दिन वो तिरस्कार सहन किया और आज बड़े बड़े राजा महाराजा चरण पूज रहे हैं। घर घर मांगे तू कपुनी अब भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु ते अब राम साय। बोले वो दशा किस तुलसीदास की थी? बोले जो श्री राम जी से विमुख था तब उसकी ये दशा थी, और अब राम जी के सन्मुख हो गया तो अब भूपत पूजे पाए। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत पर सुधरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कली कल्याण फरो। चाटत रहो स्वान पातर ज्यो पर कबहू ना पेट भरो, और अब सो हो वही तुलसीदास चाखत नाम सुधारस अपेखत पर सुधरो, क्योंकि जो जो तो ही राम लागते मीठे, अब संसार के सारे पदार्थ फीके हो गए श्री नाम के माधुर्य के आगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभो, ये जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये मेरी महिमा नहीं है, ये आपकी नाम मात्र की शरणागति की महिमा है। यद्यपि गोस्वामी जी तो पूरी तरह राम जी के चरणों में समर्पित हैं, पर ये उनका दैन्य है। कहते हम पूरे शरणागत कहां बन पाए, नाम भर जुड़ पाया आपसे, उस नाम की लाज आपने ऐसी रखी कि महाराज में वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी बनी है राम रावरे बनाए न तो, आपने बना दिया इसलिए तुलसीदास की बिगड़ी भी बन गई, और यदि आप न बनावे तो तुलसी बनी है राम रावरे बनाए न तो, धोवी कैसो कुकुर न घर को न घाट को। ये लोकोक्ति को भी कवितावली में गोस्वामी जी ने धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। बोले भैया देख लो, तुलसीदास की बिगड़ी बन गई राम जी की शरण में जाने से, और यदि तुलसीदास ये घोषणा कर दे कि ये तो हमारा भाग्य ही ऐसा था, हमारे अपने पुरुषार्थ से हमारी बिगड़ी बन गई, तो समझ लो तुलसीदास तुम्हारी वही दशा होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तुलसी बनी है राम रावरे बनाए न तो, धोबी कैसो कुकुर घर को ना घाट को। विनय पत्रिका में एक जगह और गोस्वामी जी कहते हैं, फिर यो ललात बिनु नाम उधर लगी दुखौ दुखित मोहि हेरे। गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया कि दुख ने भी जब मुझे देखा तो वो भी दुखित हो गए। मेरी इतनी करुण कथा है कि दुख ने जब मेरी ओर दृष्टिपात किया तो दुख भी सिसकने लग गया, वो भी रोने लग गया, दुख भी मेरे दुख को देखकर दुखी हो गया। बोले अब कहते हैं नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबुर बहेरे। सच्ची बात तो ये थी कि मैं या तो बबूल का पेड़ था या बहेड़े का। गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, या तो मैं बबूल का पेड़ था पहले या बहेड़े का पेड़ था। अब बोले राम जी की शरण जाते ही संत सदगुरु की कृपा के भाजन बनते ही बबूर का पेड़ है, पहेड़े का पेड़ अब रसाल हो गया है। रसाल माने आम। विचित्र बात है कि नहीं, कि बबूर का और बहेड़े का पेड़ आम बन सकता है क्या? कहते भैया देख लो, राम नाम का प्रभाव, राम जी की शरणागति का प्रभाव, भगवान की भक्ति का प्रभाव, कहां में बहेड़े और बबूर के पेड़ जैसा आज में रसाल हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी संघर्ष की स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में दिखाई पड़ती है, बड़ी कष्टकारी परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और एक जीवन का ऐसा भी विचित्र पक्ष है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऐसे कष्ट को सहन करने वाले गोस्वामी जी के ऊपर भगवती जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा की कृपा हुई, वो रोज पायस खिला के जाने लगी, भोले बाबा की कृपा भई, शंकर जी ने स्वयं नरहरदास जी को चित्रकूट में आज्ञा दिया कि तुम तुलसी बालक तुलसी को शरण में स्वीकार करो, भगवान उमा महेश्वर की कृपा भई, और फिर काशी में रह करके परम विद्वान वीतराग षडंग वेद विदुष श्री शेष सनातन जी के चरणों में रहकर अध्ययन किया, और अध्ययन ही नहीं किया, शेष सनातन जी के विलक्षण वैदुष्य के विद्या के ज्ञान के एकमात्र उत्तराधिकारी तुलसीदास जी महाराज, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, छह अंगों के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त किया गोस्वामी तुलसीदास जी, अपने समय का महानतम विद्वान। और वस्तुतः गोस्वामी जी का जो विलक्षण साहित्य है उसको देखकर भारतवर्ष के बड़े से बड़े विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्य। ऐसा काशी के कितने बड़े विद्वान थे, पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी, महान विद्वान थे, मानसी के ऊपर टीका भी लिखी, विजयानंदी टीका। वो कहते थे कि इस युग के साहित्य में इस इतना बड़ा विद्वान, धर्म शास्त्र का, सनातन धर्म के प्रत्येक विषय का इतना बड़ा विद्वान कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, तुलसीदास जी के जैसा विद्वान तुलसीदास जी, उपमा में कोई दूसरा, ऐसा वैदुष्य। और राम जी ध्यान से सुने, अपने गुरु महाराज की अंत्येष्टि भी स्वयं इन्होंने की, गुरु जी की इच्छा थी ऐसा सदाचारी मेरा शिष्य ही मेरी अंत्येष्टि करे, शेष सनातन जी की अंत्येष्टि तुलसीदास जी महाराज, और उसके बाद गुरु का वियोग, व्यापा शिक्षा गुरु का काशी में मन नहीं लगा, गोस्वामी जी चित्रकूट अपने गुरुदेव श्री नरहरियानंद जी का दर्शन करने पधारे, तब तक सूचना मिली कि गुरु महाराज भी भगवत धाम चले गए, तो और अधिक वज्रपात जैसा गोस्वामी जी पर हो गया, और वे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्हें स्मृति में नहीं था जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वह गांव कैसा है। आप लोग कहेंगे स्मृति में क्यों नहीं था? स्मृति में इसलिए नहीं था कि अभी नवजात बालक राम बोला का नालोच्छेदन भी नहीं हुआ है, नाल कटता है ना, नालोच्छेदन भी नहीं हो पाया, और उसी समय माता ने चुनिया के हाथ में दे दिया। उस अवस्था में भला बालकों को कोई होश आवास होता? अब फिर माता तो जीवित अवस्था में चुनिया को देकर और माता ने तत्काल प्राण विसर्जन कर दिए। और चुनिया जब लेकर आई, 5 वर्ष तक चुनिया ने पालन पोषण किया अपनी ससुराल में जाकर के। और चुनिया नाहिन है, नापित परिवार की वह स्त्री थी, राजापुर की बेटी थी और हरिपुर की बहू थी। हरिपुर पास में था, वहां की वो बहू थी, राजापुर की बेटी थी। उसके सास ससुर ने उसकी भावना का बहुत आदर किया और बालक तुलसी का खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। और इस विवेक पूर्वक पालन पोषण हुआ कि ये सरयू पारिण विप्रकुल का बालक है, इसके अनुरूप शौचाचार होना चाहिए, इस मर्यादा से तुलसी राशि का पालन हुआ। और फिर चुनिया भी भगवत धाम सिधार गई। और जब चुनिया भी भगवत धाम सिधार गई और नापित ने जाकर सूचना दिया राजापुर में, ये विधि का विधान है, इसमें किसी को कोई दोष नहीं है, ठाकुर जी क्या करना चाहते तो ठाकुर जी ही जाने, पंडित आत्मा राम जी ने इतना रूखा उत्तर दिया, इतना रूखा उत्तर दिया। उन्होंने कहा ऐसे बालक को हम अपने यहां लाकर क्या करेंगे, जो अपने पालन पोषण करने वाले को ही संसार से विदा कर देता है। ऐसे भाग्यहीन संस्कार शून्य बालक की हमें आवश्यकता नहीं है, ये पिता ने उत्तर दिया। अरे विचार तो होना चाहिए कि 5 वर्ष का बालक हो गया, एक बार देखें तो सही, ये उनकी स्थिति है। उसी समय एक महात्मा आए हुए थे राजापुर में, उन्होंने इस निष्ठुर व्यवहार को देखा, बोले इस परिवार का शीघ्र विनाश हो जाएगा। और 6 महीने के अंतर्गत आत्माराम दुबे का संपूर्ण कुटुंब समाप्त हो, कोई जीवित नहीं। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि तुलसीदास जी को अवसर ही नहीं मिला कभी राजापुर के दर्शन का। मात अपने पालन पोषण करने वाली धात्री चुनिया से सुन जरूर रखा था राजापुर के बारे में, और अब 2 गुरुजनों का सहारा था, वे भी चले गए। तो तुलसीदास जी के मन में आया, अब चित्रकूट में भी मन नहीं लगा, तब क्या करें। तो गोस्वामी जी के मन में आया, सुना है राजापुर यही निकट में कहीं है, क्यों ना अपनी जन्मभूमि का चलकर दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो मनु महाराज के वाक्यों का आदर करते हुए मातृभूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति प्रेम जागृत हुआ। और जब वहां पहुंचे तो गोस्वामी जी का आगे चरित्र तो आप क्रम से सुनेंगे, ये केवल दिग्दर्शन मात्र करा रहा। तुलसीदास जी का विवाह भी हो गया। और विवाह के बाद इतने बड़े वैराग्यवान महापुरुष, जिसने इस प्रकार की बाल्यकाल में पीड़ा को सहन किया और फिर नरहरिदास जी जैसे समर्थ सद्गुरु को प्राप्त किया, फिर शेष सनातन जैसे भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान महापुरुष के द्वारा 6 अंगों के सहित वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसी इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विज्ञानी, महानुभाव महापुरुष भी विवाह के पश्चात रत्नावली के प्रेम में, रत्नावली के प्रेम में ऐसे बंध गए कि इनके विवाह के बाद के 5 वर्ष अत्यंत आशक्त पुरुष के जैसे दिखाई पड़ते हैं। पूज्य स्वामी श्री रामेश्वर दास जी रामायणी हमारे ब्रज के बहुत बड़े महापुरुष, वो तो कहते हैं कि जगह जगह जो उन्होंने उद्धरण दिया है अनुभव पूर्वक दिया है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो कहते गोस्वामी जी का अनुभव बोल रहा है काम ही नारी प्यारी जिमी।
और इतना बड़ा माने केवल जीवन के 5 वर्ष इस प्रकार के व्यतीत हुए और फिर इसके बाद में इस प्रकार का त्याग और इस प्रकार का वैराग्य और कलयुग को भी जिनके आगे घुटने टेक देने पड़े, ऐसा व्यक्तित्व ऐसा महापुरुषत्व
कौन ऐसा है जो इस विलक्षणता से भरे हुए चरित्र का श्रवण करे और उसे भगवत प्राप्ति के पथ में चलने का साहस न हो उत्साह न हो। ये कार्य भैया जी संतों का चरित्र करता है, ये सामर्थ्य भगवान के भी चरित्र में नहीं,
क्योंकि जीवन के सारे पक्ष आ जाते हैं मनुष्य के जीवन के। ऐसी अवस्था होने पर भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के बाद भी इतनी ऊंचाई पर जाया जा सकता है,
ये प्रेरणा केवल संत चरित्र के माध्यम से प्राप्त होती है।
एक बात और हम कह दें प्रसंग बस,
आप लोग कहेंगे कि जब साक्षात कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो,
जब साक्षात कलिकुटिल जीवों के निस्तार के लिए वाल्मीकि ही तुलसीदासी के रूप में प्रकट हुए,
तो वाल्मीकि का तो ऐसा कोई कर्म था नहीं, क्योंकि जीवन में दुख कष्ट जो भी आते हैं प्रारब्ध कर्म हमारे संचित कर्मों से ही बनता है।
तो गोस्वामी जी के पूर्वकृत कौन से ऐसे कर्म थे जिसके कारण यह अवस्था उन्हें प्राप्त करनी पड़ी, इतना कष्ट भोगना पड़ा, ये एक तर्क किसी के भी चित्त में हो सकता है। इस संबंध में पहले एक बात अच्छी प्रकार से जान लो समझ लो और अपने भीतर पक्का कर लो, तब किसी महात्मा का चरित्र सुनकर फिर कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी। क्या हम लोगों के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह हमारे संचित पूर्व कृत, वही हमारे पूर्व कृत संचित सुकृत और दुष्कृतों का परिणाम है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा घटित हो रहा है वो हमारे पूर्वकृत संचित सुकृतों का परिणाम है। हमारी बात सब समझ रहे हैं कि नहीं? और जो हमारे जीवन में प्रतिकूल घटित हो रहा है वह हमारे पूर्वकृत संचित दुष्कृतों का परिणाम है, दुष्कृत्यों का परिणाम है, दुष्कृतों का परिणाम है। पर भगवान के सिद्ध कोटि के जो भक्त होते हैं, महत्पुरुष होते हैं, जिनको भगवान जीव जगत को शिक्षा देने के प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही धरती पर भेजते हैं, ऐसे महात्मा वे पुण्य और पाप से सर्वथा रहित होते हैं। उनके जीवन में न सुकृत है और न उनके जीवन में दुष्कृत है। जब सुकृत दुष्कृत ही नहीं है तो न पुण्य है तो न सुख है फिर न दुख है, फिर भी सुख दुख देखा जा रहा वो क्या है? ध्यान से सुने, वो सुख दुख उनके कर्म कर्म तो है ही नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, वो तो सब खत्म हो गया, जल के भस्म हो गया। तब क्या है? बोले उनके जीवन में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो सुख दुख है, वो किसी कर्म का परिणाम नहीं है, वो भगवान की इच्छा का फल है, वो भगवत इच्छा का परिणाम है।
आप लोग कहेंगे वाह भगवान की इच्छा ऐसी क्यों भाई, भक्त को पीड़ा मिले कष्ट मिले ये इच्छा भगवान में क्यों भाई? अरे भैया इस भक्त की पीड़ा कष्ट से न जाने माया की चक्की में पिसते हुए कितने जीवों के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा चरित्र न हो तो हम लोग जो माया अविद्या की चक्की में पिस रहे हैं, हम लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगी? अच्छा चलो, भक्त की मान लो हमने मान लिया, वो जीव कोटि का है, कोई सुकृत दुष्कृत बन गया। भगवान जो स्वयं कह रहे हैं नमे कर्माणि लिम्पन्ति और नमे कर्म फले स्प्रिहा, कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते, कर्म फल की मुझे स्प्रिया नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं, भगवान से ज्यादा आफत तो और किसी ने नहीं भोगी। चाहे रामावतार देख लीजिए और चाहे कृष्णावतार देख लीजिए, क्या कम विपत्ति भोगी है ठाकुर जी ने? बड़ा भारी संघर्ष किया। चरित्र आप सबके सामने स्पष्ट है, इसलिए महाराज हमारे पुरखा पूज्य बाबा श्री मलुकदास जी ने तो ठाकुर जी से यहां तक कह दिया। वे कहते हैं सांच कहो तो हरि मोहि कीजे, सांच कहो तो हरि मोहि कीजे, झूठा कहा न जाई। मलुकदास जी कह रहे हैं मैं सच्ची बात कहूं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। बोले सच्ची बात से नाराज होंगे तो झूठ बोलो। अरे बोले झूठ बोलेंगे तो भी नाराज हो जाएंगे तो झूठ ही बोल दो। कहते साधु होकर झूठ कैसे बोलें, साधु का व्यवहार सच्चा होना चाहिए। भगवान बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, तुम अपने मन की बात कह दो। कहते कहत मलूक उन्हू दुख पाया जिन यह चाल चलाई। ये संसार के चक्र का प्रवर्तन जिन्होंने किया है, वे भी जब जब इस धरती पर लीला करने आए तो उनको भी रोना पड़ा। इसलिए तन धर के कोई सुखी न देखा, शरीर धारण करने वाला कोई सुखी हमें नहीं दिखाई पड़ा। तो अब ठाकुर जी के लीला में आप क्या कहेंगे? नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रिहा, इस प्रकार के भगवान के लीला के संबंध में फिर क्या कहेंगे? क्या वह कोई कर्मजन्य है? परमात्मा को प्राप्त होने वाला सुख दुख कर्मजन्य है क्या? तब क्या है? संभवाम्यात्म मायया, संभवामी आत्म माया। माया शब्द का के दो अर्थ हैं, माया दंभे कृपायांच, एक अर्थ दंभ एक अर्थ कृपा है। भगवान कहते मैं अपनी कृपा से ही अवतीर्ण होता हूं और कृपा पूर्वक ही जीवों को शिक्षा देने की अनेक लीलाएं करता हूं। अब राम जी वन में न जावें, कष्ट न भोगें, पिता की आज्ञा का पालन न करें तो हम लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान के चरित्र में जो कुछ घटित होता है वह किसी सुकृत और दुष्कृत से जन्य नहीं होता। ऐसे ही भगवान का आत्मस्वरूप जो भक्त है उसके जीवन में जो कुछ घटित होता है वह भी कर्म जन्य नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से होता है। कली आपने कहा था, सेठ जी की एक बात सुना करके कलीश्वर प्रसाद जी ने कहा था कि सेठ जी लघुशंका जा रहे थे और पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पीछे हो लिए, साथ साथ चलने लगे। तो सेठ जी ने क्या कहा? इतनी विलक्षण बात कही जो वस्तुता सबके बीच में सब उसके सुनने के भी अधिकारी नहीं। क्या कहा फिर से वाक्य दोहरा में क्या कहा? और कुछ लोकवत करते हैं, सेठ जी कह रहे हैं कि जैसे रामकृष्ण भगवान अवतार लेते हैं तो तो कुछ लीला तो ईश्वरतापूर्ण लीला करते हैं, भगवान के जैसी करते हैं, और कुछ लोकवत करते हैं, नरनाट्य जिसको हम कहेंगे, नरनाट्य नरनाट्य करते हैं। सेठ जी ने स्वामी जी से कहा, हम भी दोनों तरह की लीलाएं कर रहे हैं, कुछ लोकवत और कुछ अलौकिक, हमको भी दोनों प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। ये सेठ जी ने कहा, इसका मतलब है कि भगवान और भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनमें किंचित भी भेद होता नहीं है। विचित्र लीला है, सत्राजित मारा गया और सत्यभामा जी रोती हुई पहुंच गई इंद्रप्रस्थ, राजसु यज्ञ हो रहा था और जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान रोने लगे, अहो नह परमह कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतुः, हाय रे हाय मेरे ऊपर भारी विपत्ति आई, भारी संकट आया, कहकर भगवान बिलख बिलख कर रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया, जिनका पिता मरा है उनका रोना बंद हो गया, उनका रोना, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, भगवान इतना रो रहे हैं, राम राम राम। सत्यभामा जी ने कहा, धैर्य धारण करो। बोले नहीं, कैसे धैर्य धारण करें, हाय रे हम तो लुट गए, हमारे ससुर जी पधार गए, बड़ा यश कीर्ति हमारी फैलाई थी, अब कहां चले गए, उनके बिना संसार सूना हो गया, और बहुत रोए भगवान। सुखदेव जी वहीं उत्तर दे रहे, क्यों रोए, बोले अनुसृत्य नृलोकताम, नर नाटक करने में चतुर श्री कृष्ण रोने लगे, इसलिए रोए कि यदि हम नहीं रोएंगे और गीता का उपदेश देने लग जाएंगे कि न जायते मृते वा कदाचित, तो तुरंत सत्यभामा जी कहेंगी हमारा बाप मर गया, इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है, और यदि हम ये कह दें तो नाराज हो जाएंगी सत्यभामा जी, और यदि हम ये कह दें और यदि हम ये कह दें कि कोई बात नहीं, आप धैर्य धारण करो, तुम्हारे पिता की हत्या करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, तीनों लोकों में कहीं भी चला जाए, तो भी प्रसन्न नहीं होंगी, कहेंगी ठीक है, राजा का काम है सबका न्याय करना, न्याय कर रहे हैं, अपराधी को दंड देंगे, हमारे पिता के प्रति इनका सौहार्द नहीं था, ये उनके मन में आएगा। और चुप रह जाएं तो और बुरा लगेगा, ये तो चाहते ही थे कि हमारा पिता मर जाए, क्योंकि उसने उनके कारण इनकी कीर्ति में कुछ कलंक लगा था, मणि की चोरी लगी थी, ये इनके मन में आ जाएगा। तो भगवान ने सोचा संसार में मनुष्य को वैसा ही करना चाहिए जिससे सब लोग राजी रहें। तो प्रसन्न कैसे होंगी सत्यभामा जी, बोले प्रसन्न तब होंगी जब इनसे ज्यादा हम रोने लग जाए, वो प्रसन्न हो जाएंगी, कहें समझ जाएंगी कि इनका प्रेम हमसे ज्यादा है, बस इसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे, बस ठाकुर जी खूब रोने लगे। मानो ठाकुर जी ने शिक्षा दिया, तुम्हारे रोने से भी किसी को हंसी प्रसन्नता होती हो खूब रो लो, और तुम्हारे हंसने से प्रसन्नता होती तो हंस लो, और ये सब बाहरी क्रियाएं समझो, हंसना रोना, न तुम भीतर से हंसो न रो, तुम अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहो, ये मानो भगवान अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं। कहते कोई बालक की मृत्यु हो गई और सेठ जी रोने लग गए बहुत, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सेठ जी इतने बड़े ज्ञानी ये कैसे रो रहे हैं, यही की घटना है, कहां है, है? बांकुरा की है? छोटे भाई का पुत्र था, सब रो रहे हैं, तो सेठ जी भी रोने लगे, उन्हों का आप तो चुप हो जाइए, बोले आप लोग रोना बंद कर दो तो हम चुप हो जाए। लोकवत् लीला कैवल्यम, इसलिए भैया भगवान के भक्तों के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वो कर्मज नहीं होती हैं, वो भगवान की इच्छा से जन्य होती हैं, इसलिए कई बार श्रेष्ठ भक्तों के संबंध में दैवज्ञ भी हाथ खड़े कर देते हैं।